नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में मनुष्य की जो महिमा गाई गई है उसका तात्पर्य यह है कि इस शरीर से हम पूर्ण उन्नति कर सकते हैं। एक प्राणी मात्र के बीच में लाभ लेने की इच्छा रहती है, वही महान सुख मिल जाए दुख ना रहे, ये दो बात। दुख तो रहे नहीं और शांति और आनंद मिल जाए, तो इसके लिए एक मनुष्य ही है ऐसा जो महान शांति को प्राप्त कर सकता है और दुखों का लेश भी न रहे, ऐसी स्थिति इस मानव शरीर में प्राप्त कर सकता है। वो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, मनुष्य मात्र का इसमें अधिकार है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का हो, मुसलमानों का न हो, ईसाइयों का हो, बौद्धों का न हो, ऐसा नहीं है। मनुष्य मात्र, मनुष्य हो चाहे मनुष्य हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य मात्र उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, नहीं तो शरीर ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। मानव शरीर में बल कोई विशेष नहीं है, विशेष अधिकार है। बलवान तो पशु बहुत हमारे बलवान है, हाथी है, घोड़ा है, बहुत बलवान है हमारे से, तो बल आदि को लेकर के नहीं है और बुद्धि आदि को लेकर के है, वो भी एक विलक्षण बात है कि बुद्धि का सदुपयोग करने की महिमा है। बुद्धि की भी महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है, वो भी सदुपयोग में है। मानो बुद्धि से परमात्म तत्व की तरफ चलेगी तो, और एक संसार की तरफ चले जिसमें संसारिक अपना सुख चाहे और दूसरे का विनाश चाहे, तो बड़े बड़े बम बढ़ाने की शक्ति इसमें है। पर ये दुरुपयोग है मनुष्य शरीर का, सदुपयोग है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सर्वोपरि ये शरीर है। इस विषय में देवताओं से भी बढ़कर इस शरीर की महिमा गई है। दुर्लभो मानुषो देह, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ये परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। तो इसकी पारमार्थिक उन्नति कर ले, इसी को लेकर इसकी महिमा है। तो आप ध्यान दें, ये मानव शरीर बड़ा प्रिय लगता है, जीना अच्छा लगता है, परंतु ये जीना आरंभ हुआ है, जन्मे तब से शुरू हुआ है। माँ के पेट में आए और फिर जन्म लिया, तब से ये संसार शुरू हुआ शरीर, और मृत्यु पर छूट जाएगा। तो पैदा होता है और छूट जाता है, इस शरीर से सुख होता है और फिर दुख होता है। और दूसरी बात एक और विलक्षण कि ये छूट जाएगा मर जाएगा, ये बात नहीं है, मर रहे हैं। ख्याल करना, इस तरह ख्याल नहीं जाता है मनुष्य का, उल्टी बुद्धि होती है कि भाई इतने वर्ष हो गए, आज जन्म गांठ है, आज उत्सव मनाओ कि आज हम जन्मे थे। तो उल्टी बात है, जी रहे हैं, ये बात बैठी हुई है। भाई बहन विशेष ध्यान दे, मेरा बार बार कहना है कि जन्मगांठ मनाते हुए आज इतने वर्ष के हो गए, खूब ख्याल करो तो इतने वर्ष मर गए। बात है ये खास, आप हिसाब करने वाली जाति हो तो हिसाब करो, जितने वर्ष आए हैं उतने हमारी उम्र में घट गए कि बढ़ गए, आज देखा सब करो ऐसा। जितने जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष हमारी उम्र में से कम हो गए, और ये पूरे कम हो जाए तो उसी दिन मरना पड़ेगा, उसमें हमारी बल बुद्धि आदि कोई काम नहीं रहेगी। हम जो जी रहे हैं हमारी उम्र है उसके बल पर जी रहे हैं, वो उम्र के दिन खत्म होने के बाद फिर जीने की ताकत नहीं है। आप रुपयों को लेकर देखते हो, बड़े रुपये हो गए, क्या रुपयों से मौत से बच जाएंगे? क्या बल आदि के द्वारा मौत से बच जाएंगे? मौत में जो देरी हो गई हो रही है उसमें खास कारण ये है कि हमारे जीने का समय बाकी है, श्वास और बाकी है हमारे, इस वजह से जी रहे हैं। तो जीने का समय जा रहा है, समाप्त हो रहा है। आप 50 वर्ष से हो गए तो 50 वर्ष हमारी मौत नजीक आ गई। अगर ही कितना है इसका तो पता नहीं है, परंतु जितने खर्च हो गया है उसका तो पता है ना। 60 आ गए, 70 वर्ष आ गए, 5 वर्ष आए, तो 5 वर्ष तो कम हो ही गए, 60 कम हो गए, बाकी कितना इसका कुछ पता नहीं, परंतु इतने वर्ष तो हमारे जीने में कम हो ही गए, पक्की बात है, सच्ची बात है। उम्र से आगे कैसे जी सकते हैं? तो प्रतिदिन प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, मर रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं, जीने से तो दूर जा रहे हैं और मौत के पास जा रहे हैं। दसवीं काम करना वो कब करोगे, वो कब दिन आएगा? तो हमारे दिन जा रहे हैं, समझ लेंगे बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। जन्मा है उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज नहीं है, चाहे 5 वर्ष का ही हुआ तो 5 वर्ष तो कम हो ही गए। अब 60-70 वर्ष के अब हो गए तो 60-70 वर्ष तो हमारे कम हो ही गए। 100 वर्षों तो बहुत कम आदमी होते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो हमारी इतनी उम्र खत्म हो गई है तो मौत नजीक आ गई है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि चेत करो, ख्याल करो, अंधानंद हो रहा है जो हमारे जीवन का समय समाप्त हो रहा है। हमारे पास जो धन है वो बढ़िया धन कौन सा है? ये रुपए पैसे जमीन जायदाद ये धन इतना बढ़िया नहीं है। बढ़िया धन अपने पास में एक बहुत बड़ी भारी पूंजी बढ़िया हमारे पास है, वो सबके पास है। वो धन है जीवन का समय, ये श्वास हमारे जितने बाकी है उतने लेने पर फिर मरना पड़ेगा। जैसे घड़ी होती है उसी के चाबी लगाई जाए, चाहे बिजली से चले, उसमें जो जितनी घड़ी चल रही है उतना उसी में तो खर्च हो रहा है। चाहे इसमें सेल लगा दिया तो सेल खर्च हो रहा है ना। अरे खर्च होते हो तो पूरा खर्च होने पर चलेगी घड़ी? चाबी लगाई हुई एक ऐसे खट 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 होते हुए उसमें जितनी चाबी है वो खर्च होने पर वो घड़ी चलेगी? घड़ी में तो आप चाबी दूजी भर दोगे, सेल बदल दोगे, पर इस घड़ी में बदलने आता है आपको? ये चाबी लगानी आती है? अगर नहीं आती है तो उस दिन मरना ही पड़ेगा, किसी के हाथ की बात नहीं है। तो वे बढ़िया दिन हमारे जा रहे हैं और मृत्यु नजीक आ रही है। अरे काम कितना हुआ है? हम उद्धार करना चाहे तो क्या आधा ज्ञान हो गया है, आधी उन्नति हो गई है? अगर होगी तो कितने वर्षों में, इस हिसाब से ये उन्नति क्या वर्षों में होगी और उतने पर जीना होगा क्या? भाई बहनों को चेत करना चाहिए, इस तरह विचार करना चाहिए। वो जीने का जो समय है ये असली पूंजी है, असली धन है, उसके बल पर हम जी रहे हैं, वो बल है ये। और इस उम्र के लगाने से आप निर्धन से धनवान हो सकते हो, इस आयु के लगाने से आप बिल्कुल अपड होकर के बड़े विद्वान बन सकते हो, संसार में नाम हो सकता है, एक आदमी के 20-25 परिवार के आदमी हो जाते हैं। इस धन के लगाने से, इस उम्र के लगाने से सब चीजें हो सकती है, संसार की चीजें सब हो जाए इतनी बात नहीं है। समय अगर लगाया जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जो सबसे दुर्लभ है वो तत्व प्राप्त हो जाए इस समय के लगाने से। संत महात्मा हुए हैं तो उनके क्या बिलिश होता है कि उन्होंने अपने जीवन के समय को भगवत प्राप्ति में लगाया है। तो वो समय अगर भगवान में लगावे, जप करे, कीर्तन करे, भगवान के ध्यान करे, तत्व का विचार करे, भगवान की तरफ चले, तो जरूर उन्नति होगी। संसार में तो सर्वोपरि आदमी अगर होगा धनी तो एक होगा, दो होने पर सर्वोपरि तो नहीं जाएगा। और इसमें हजारों लाखों करोड़ों सब महात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, सबके सब बड़े बड़े हो सकते हैं, आज ही लाभ इसमें हो सकता है इतना। तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका है मानव शरीर का, वो हमारा शरीर समय जा रहा है, कितनी हानि हो रही है। सा हानि तद महत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। वो बड़ी भारी हानि है, बड़ी गलती है, बड़ा नुकसान है, बड़ी मूर्खता है, बड़ा अंधापन है, जो मुहूर्त क्षण में भगवान का चिंतन न किया जाए। भोगों का चिंतन, पैसों का चिंतन करते हैं, क्या वो न्याय करेंगे, क्या पैसे काम आवेंगे, क्या ये भोग आपको मौत से बचा लेगी, है ताकत इसी विषय में। स्वयं विचार करें, हमारे समझने की सोचने की आवश्यकता है। तो समय जा रहा है और मौत आ रही है, वो समय कीमती, उस समय की देने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति नहीं, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, अनंत सृष्टि जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होती है, वे भगवान कहते मैं भक्तों का दास हूँ। तो भक्त कौन बने, जो भगवान में लगे वो भक्त बने। और वो लक्ष्य तो इसमें किसी की बाधा नहीं है, इसमें किसी जाति की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई ज्ञान हो, जो भगवान तरफ लगता है तो संत बन जाता है। तो भगवान के मुकुटमणि बनने की योग्यता भगवान ने मनुष्य को दे करके भेजा है, वो भाई और बहनों को अधिकार प्राप्त है। अगर तत्परता से लग जाए तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो चेत करना चाहिए हमारे क्या करना है और जीना कितना बाकी है। मति बैठ्या बैठ्या फिरो मगर मस्ती से आवे को काल ले जाए जबरदस्ती से। मजबूर होगा मरने के लिए, हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, स्वाधीनता नहीं चलेगी। यार वो दिन आ रहा है, इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ। सज्जनों महान रक्षा करने वाले भगवान है, और कोई है नहीं, किसी में ताकत नहीं है कि आप हमारी रक्षा कोई कर सके। सावधान हो जाओ। तो हमारा बड़ा भाई हमारे पास धन है, जो जीने का समय है, वो ताश चौपड़ में, खेल तमाशो में, सिनेमा देखने में, इधर उधर घूमने में समय बर्बाद हो रहा है। राम 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 राम, कितनी हानि हो रही है, कितना बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इस वास्ते सज्जनों से कहना है कि इस बात पर ध्यान दें। श्रवणा या भी बहु फिर यौन लभ्य, सुनने के लिए भी ये बातें नहीं मिलती है, ऐसी कृष्ण बातें हैं। तो हरेक भाई बहन को सोचना है, अब यहाँ आए सत्संग के लिए आए, पर सुख पहले, आराम पहले, सुविधा पहले। अरे सुविधा न हो, तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, सत्संग मिलता है। परंतु ये दो नंबर में, एक नंबर तो आराम सुख, वो एक नंबर में। अब परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी बताओ। और भक्त कहते हैं इतना वर्षों से हम सत्संग करते हैं, इतना वर्षों से हम जप करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतनी माला फेरते हैं, वो तो हिसाब आप करते हो, परंतु आपके मन में मूल्य किसका है, सुख का है कि भजन का है, आराम का मूल्य है कि भजन का मूल्य है, परमात्मा के चिंतन का मूल्य किसका मूल्य है, ये जरा आपने सोचा है। अगर नहीं सोचा है तो आप कैसे दोष दे सकते हैं कि इतना वर्षों से भजन करते हैं भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भीतर में लक्ष्य सुविधा हो जाए, सुख हो जाए, आराम हो जाए, मान हो जाए, बढ़ाई हो जाए, परिवार में रहते हैं लोग मेरे को अच्छा समझे, लोगों को अच्छे समझने से क्या होगा, क्या भगवान गवाह लेंगे लोगों की, और क्या हो जाएगा, क्या भगवान मान लेंगे। बहुत आदमी कह दिया कि ये महात्मा है, संत है, तो क्या उस भगवान की चलेगी बात। अपना हृदय टटोल करके देखो, हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। एक और बात ध्यान दे रहे आप सुने, संसार की सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता, नियम है। अब सुख हमारी इच्छा से मिलता, धन हमारी इच्छा मिलता तो लखपति से कम कौन रहता है, क्यों रहता? इच्छा करोड़पति अरबपति की होती है, क्या मिल जाएगा? अगर भगवान की इच्छा मिल जाएगा, लाख नाम रोजाना आप ले सकते हो, लाख पैसा कमा सकते हो एक दिन में, तो पैसे में लालच है, नाम में नहीं है लालच। रोजाना लाख नाम आप ले सकते हो, अगर परमात्मा समय बर्बाद होता है, बिना विचार समय जा रहा है, उस तरफ ख्याल ही नहीं कर रहे हो, आपका निकम्मा समय जिसमें पैसे पैदा ना होता हो, घर का धंधा ना होता हो, ऐसा समय 24 घंटा में आपके पास, इनमें पैसा कमाने का और जो भोग भोगने का समय है वो है जैसा आपके पास रहे, फालतू फालतू समय भगवान में लगा दो तो आपका कल्याण हो जाए। अरे वो समय लगाओ तो कहना ही क्या है फिर, फालतू समय कितना जाता है, पापों में कितना, झूठ कपट बेईमानी में कितना समय लगता है, कितनी बुद्धि लगाते हो, कितना उस विचार करते हो, अगर वो लगाया जाए तो कितनी विलक्षणता हो जाए, ये स्वयं सोचे आप। ये केवल कहने और सुनने की बात नहीं है, ये जीवन की बात है, अपने काम करने की बात है। ऐसा नहीं सत्संग सुन ली, भाई सुन ली ठीक है, कथा सुन ली, सुनना ही नहीं है, सोचना है, अपने को सामने रख करके विचार करना है। आप लाभ चाहते हो तो लाभ के लिए काम कितना करते हैं, लगन कैसी है भीतर से, भगवान ऊपर की बात नहीं देखते। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, आपके भीतर में लालसा क्या है, भाव क्या है, आपकी रुचि किधर है, स्वतः आपकी प्रवृत्ति क्या है, किसमें आपका मन बिना लगाए लगता है, ये सोचो। क्या इसमें भगवान की तरफ बिना लगाए जबरदस्ती लगता होगा ना, उसमें लगाते हैं और संसार में लगता है, जो लगता है वो असली, लगाते हैं वो नकली, भगवान करते हैं वो भगवान का भजन भी नकली करते हैं, असली हृदय से कहाँ होता है, हृदय से भगवान पुकार तो भगवान दूर थोड़े ही है। एक जन्म की माँ वो भी बच्चा रोने से एकदम हृदय लगाती है, आ जाती है, तो क्या सदा भगवान, सदा की माँ हमारी अनादिकाल से, क्या हम रोने लग जाए और घबरा जाए तो मां में दया नहीं है? अनंत माताओं में दया वहाँ भगवान से आई है, अरे भगवान में दया आई कहीं से नहीं, वहाँ है, तो बच्चे का दुख देख सकती है माँ, तो भगवान देख सकते हैं, मन दुख होता ही कहाँ है, दुख होता है ये धन नहीं मिला, भोग नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये दुख होता है, उसी लिए रोते हो, मर जाए को रोते हो, धन चला जाए तो रोते हो, हार्ट फेल हो जाता है, धन चला गया, भगवान का भजन नहीं हुआ, उम्र चली गई, दुख हुआ है कभी? मेरे तो कभी कभी मन में आती है बात, रात्रि का समय और बाहर वर्षा में सोते हैं, वर्षा रही और भीतर चले गए, भीतर चले गए तो जूती बाहर रह गई, फिर जाते भजन रहे जूती लाकर भीतर रखते हैं, इतनी लाल साल भगवान की आई वत में और भगवान का नाम भूल गए, आप इज्जत कितनी करते, ये स्वयं सोचो कितना महत्व किसको दे रहे हैं। हम चाहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति, पर जूती जितने भी इच्छा तो नहीं हो सकी, जूती कौन सी नष्ट हो जाती है, थोड़ी भीग जाती है, इतनी बात है, अरे भगवान के भजन के बिना दुर्दशा कोई छोड़ा सकेगा नहीं। मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा न ठोरा से कुण रावण देला, लख चौरासी जून में रुण तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव। कैसे मोह में समा समय बर्बाद कर रहा है, राम 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 भगवान का नाम लो, चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते हर समय सावधान रहो। सज्जनों मौका मिला है, इधर ख्याल नहीं किया, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नाचीने कृत इंदर खड़ कर दीनी खे, ऐसा मनुष्य ही उत्तम मिला भगवान के भजन करने के लिए। वो मन बहुत सा चला गया और रहा हुआ वो भी जा रहा है, अब भी अगर चेत करें तो बहुत कुछ हो सकता है। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आंखें मीच कर लग जाओ, आंखें मीचना का संसार का भोग है, संसार का सुख है, रुपया पैसा है, गहना कपड़ा है, बढ़िया है, इधर देखते रहो तो समय तो हो जाएगा बर्बाद और मिलने वाला कुछ नहीं है। गहना कपड़ा ज्यादा हो गया, रुपया ज्यादा हो, क्या फायदा हुआ? मन अटका रहेगा तो दुर्गति होगी, भूत प्रेत बनोगे कहीं। देखो आप वेश जाति हो, वेश जाति चतुर होती है, नुकसान अपना नहीं करती। शेर जी श्री जयदेव ने कहा था कि हम बढ़िए हैं, इतना जो सत्संग करते हैं, हजारों आदमी सत्संग के लिए गीता भवन आते हैं और उनके लिए खाने पीने का सब सामान जुटाते हैं, शुद्ध घी इकट्ठा करते हैं, सब दाल चावल आदि जितने गेहूँ आदि सब इकट्ठे करते हैं और उसमें तो दो तीन दिन में बरात आवे जिसमें लोग उगता जाए और उसमें दो दो ढाई महीने तक रहते हैं, सब इतना करते हैं। एक ने पूछा कि महाराज इतना कहीं बात क्यों देखते हो? तो शेर ने उत्तर दिया कि मैं वो पारमार्थिक बात को खुद जानता हूँ, वो लाभ हो जाए किसी दिन लोगों को। जिस बात में कहा कि हम बढ़िया हैं, हम घाटे के काम में नहीं जाते, तकलीफ उठाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, परिश्रम करते हैं, घाटे के काम नहीं जाएंगे, हम बढ़िया हैं। दूसरा कोई भूल में चला जाए तो कितना लाभ इससे होता है, उस लाभ के लिए कितना काम करते हैं, आप भी कर रहे हो, परंतु भाई हमें संतोष नहीं है, जितना करते हो उतना हमें, हमारे भी संतोष नहीं है। कहाँ हुआ संतोष? संतोष ना किया, संतोष संसार की चीजों में तो संतोष रहना चाहिए, पारमार्थिक संतोष कभी नहीं करना चाहिए। तब तो ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, तो भी संतोष नहीं करना। कब तक? कि जब तक एक भी प्राणी बंधन में है, मुक्त नहीं हुआ, तब तक संतोष कैसे करें? इसमें अब संतोष नहीं करो तो सही, इसमें फायदा होगा जरूर। संसारिक पदार्थ है, भोगों की प्राप्ति, पैसों की प्राप्ति में प्राण तो मुख्य है। आप असंतोष करके उद्योग करो तो उसमें आपको लाभ होगा, वह लाभ उतना ही होगा जितना आपके भाग्य में लिखा है, और पारमार्थिक लाभ खुला है, आप कर सकते हो। मकान में बढ़े तो कहां तक बढ़े, खुले आकाश में वृक्ष कितना ही बढ़े, तो पारमार्थिक लाभ में आप कितना बढ़ सकते हो, खुला है वहां पर। सांसारिक लाभ जितना आपको लिखा उतना ही मिलेगा, कितना ही आप उद्योग कर ले उतना ही पैसे मिलेंगे, उतना ही भोग मिलेगा।